الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کل معنی بتایا تھا تخفیف کے کسی چیز کے اندر کمی کرنے کے اور یہ کمی کا مضمون عام ہے ذمہ داری کے اندر کمی کرنا گراہک کو مال دینے میں کمی کرنا ملازم کام میں چوری کرے لیکن چونکہ عام طور پر معاملات ان دو طریقے سے ہوتے ہیں کیل کے ذریعے اور وزن کے ذریعے اس لیے آیت میں کیل اور وزن کا تذکرہ ہے ورنہ عددی چیزیں بھی عموم میں شامل ہے کہ جو چیزیں گن کر کے بیچی جاتی ہے اس میں اگر کوئی آدمی کمی کرے گا تو بھی اس آیت کے ماتحت آ کے حرام ہو جائے گا ویل یہ لفظ پہلے متعدد مرتبہ گزر چکا ہے ہلاکت بربادی تباہی جہنم کی وادی یہ سب معنی کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو بڑی بربادی ہے گھٹانے والوں کے واسطے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کے اندر دیکھا کہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں چونکہ مدینہ تجارتی جگہ تھی کھجور کی باڑیاں بکثرت ہونے کی وجہ سے اور لوگوں میں تاجروں میں یہ عام عادت تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اس پر باری تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اس آیت کے نزول کے بعد اہل مدینہ کے اندر ایسی توبہ آئی کہ آج 14 صدی گزرنے کے بعد بھی ناپ تول میں اہل مدینہ کی ایک امتیازی شان ہے وہ بہت زیادہ دیتے ہیں یعنی ایک تو ہمارے یہاں تول ہوتی ہے کہ ذرا سا جھکا ہوا دیوے لیکن مدینہ کے اندر عام رواج ہے کہ اگر آپ 1 کلو کھجور لیں گے تو کم از کم 150 گرام زیادہ آئے گی اس کے اوپر اتنا زیادہ جھکا کے دینے کا رواج ہے اور روٹی کے تو وہاں پیسے ہی نہیں ہیں روٹی بے قیمت وہاں پر ہوٹلوں میں کھانے جاؤ صرف سالن کے پیسے ہوتے ہیں مدینہ میں روٹی فری کے اندر اور کوئی آدمی لینے بھی جاوے صرف روٹی ایک روٹی لے تو اس کے اوپر کوئی پیسے نہیں فری کے اندر روٹی دیتے ہیں مرتبہ میں بریڈ پاؤں کھاتا نہیں ہوں تو وہاں ہمارے گروپ میں روزانہ سالن کے ساتھ پاؤں بریڈ دیتے تھے تو میں ایک ہوٹل والے سے روٹی لیتا تھا کہ ایک روٹی مجھے چاہیے تو کہتے کہ روٹی معافی مشکل ہے خوب معافی سمند پیسے ہی نہیں لیتا وہ نے اس کو کئی دن کے بعد کہا کہ دیکھ میں اتنے دن سے مدینہ میں ہوں اور اتنے دن سے روٹی فری میں لے جاتا ہوں سب کا حساب کر کے پیسے لے دے کر نہ روٹی کے پیسے نہیں اسی سخاوت اہل مدینہ میں آج بھی عام ہے مدینہ میں آپ کو کھجور کھانا ہو مارکیٹ میں چلے جاؤ کسی بھی کھجور کی دکان پہ جتنی چاہو اتنی کھجور کھاؤ کوئی روک تھام نہیں اجوا کھاؤ امبر کھاؤ کھجور کی چاکلیٹ کھاؤ جتنی کھا سکو اتنی کھاؤ کوئی روک ٹوک نہیں تم کو 2 کلو کھا جاؤ نا دکان کے اوپر فری کے اندر تو یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اہل مدینہ اس حرکت سے ایسے باز آ گئے کہ آج تک اس کے اثرات ہے اہل مدینہ کے اندر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت شعیب علیہ الصلات والسلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا اس عذاب کے آنے کی وجہ یہی ناپ تول کے اندر کمی تھی کہ ان کی قوم ناپ تول کے اندر کمی کرنے میں بڑی ماہر تھی حضرت شعیب علیہ السلام نے مسلسل نصیحت کی پھر بھی وہ لوگ باز نہیں آئے ناپ تول کے اندر کمی کرنا شریعت کے اندر حرام ہے گناہ کبیرہ میں اس کا شمار ہوتا ہے اب یہاں آیت کے اندر جو بات فرمائی جا رہی ہے الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون کہ جب وہ لوگوں سے کیل کر کے لیتے ہیں تو پورا ماپ کر لیتے ہیں अब पूरा माप के लेना कोई बुरी चीज नहीं है कि आप किसी दुकान पर एक किलो गोश्त लेने गए तो पूरा एक किलो आपको मिले, ये कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन आयत के अंदर उसको महल्ले मजम्मत में क्यों जिक्र किया गया? आयत में महल्ले मजम्मत में जो जिक्र किया गया है वो बाद वाली आयत के पेश नजर, वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून, के लोगों को जब तुम देते हो तो उस मौके के ऊपर तुम कमी करते हो और अपना हक लेते हो तो पूरा वसूल करते हो। ये है मजम्मत का महल। ऐसे फी नफ्सी ही अपना हक पूरा लेना कोई मजमूम चीज नहीं है। लेकिन इंसान जो है ऐसा बद अखलाक बन जाए कि दूसरे लोगों से पूरा वसूल करे और खुद दूसरों को पूरा न दे, कि भाई तुझे अपना लेने का आता है तो लड़ के पूरा लेता है और जब देने की बारी आती है तो तू पूरा देता नहीं है। ये जो है मजमूम चीज को बयान करने के लिए ये बात इस्तेमाल की गई है। और बाद हजरात ये कहते कि ये यहाँ पर ताकीद के माने को बयान करना है कि कम देने की मजम्मत को मुअक्कद करना है, कि जो आदमी कम देवे उसकी मजम्मत को मुअक्कद करने के लिए कहा गया, इज़क्तालु अलन्नासि यस्तौफून वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून। जैसे हमारे मुहावरे में भी इस तरह के बहुत से जुमले होते हैं कि भाई ये है ना, अपना लेने का होवे तो नंबर वन, ने देने का होवे ने तो चमड़ी जावे दमड़ी नहीं जावे इसकी, इस तरीके से। तो ये इस अंदाज का कलाम आयत में इस्तेमाल हुआ है। हदीस में आता है कि जो लोग नाप तोल के अंदर कमी करेंगे उनके ऊपर कहत का मर्ज, कहत का अज़ाब आएगा। और कहत की मुख्तलिफ शक्लें हैं। कहत की एक शक्ल तो यही जो हमारे दरमियान मारूफ है, बारिश बंद हो जाए, कुएं सूख जाए, नदी तालाब सूख जावे और उसकी वजह से खेतियों में गल्ला उगना बंद हो जावे, ये कहत की मारूफ शक्ल है। दूसरी शक्ल कहत की ये होती है कि ज़रूरी चीज़ें बाज़ार से मफकूद हो जावे, अशियाए ज़रूरत बाज़ार से मफकूद हो जावे। जैसे बहुत से मुल्क है दुनिया के अंदर आज भी ऐसे कि वहाँ आपके पास पैसे हैं लेकिन ज़रूरत की चीज़ बाज़ार में नहीं मिलेगी, आप खरीदना चाहे पैसे दे करके तो भी आपको ज़रूरत की चीज़ें मैसर नहीं होती। ये भी कहत की एक शक्ल है। कहत की एक शक्ल ये भी है कि वो चीज़ कसीर मकदार के अंदर बाज़ार में हो लेकिन भाव इतना ज़्यादा हो कि ख़रीदना मुश्किल हो जाए, ये भी कहत की एक शक्ल है। तो भाई बाज़ार में खूब बिक रहा है सोना लेकिन भाव 33,000 रुपये तोला, तो कहा इतनी सारी गिरानी हो गई। तो कोई चीज़ कसीर मकदार में मैसर तो हो लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा हो कि ख़रीदना मुश्किल हो जाए, ये भी कहत की एक शक्ल है। ये मुख्तलिफ शक्लें कहत की हज़रात मुफस्सिरीन ने ज़िक्र की है। और बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि माल ज़रूरत की ख़रीदारी के लिए जो समन चाहिए वो समन तुम्हारे पास से मफकूद हो जाए, ऐसे ही नहीं ख़रीदना तो आप चाहते हैं कि रोज़ शाम को चाइनीज़ लारी पे आप जावे, लेकिन पैसे होवे तो जावे नहीं। तो ये भी कहत की एक शक्ल है। ये सब मुख्तलिफ शक्लें हैं कहत की। रिवायतों के अंदर आता है कि अबू जुहैना एक शख्स थे मदीना में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़माने में मदीना तशरीफ़ लाए उनके यहाँ दो सा थे। सा का माना वज़न, काटले जिसको हम कहते हैं वज़न करने के लिए, एक किलो का, दो किलो का, 500 ग्राम का, छेर का, पाहिर का, ये सब काटले सा उन्होंने दो बना रखे थे। वो कैसे दो बनाए थे कि किसी से लेने का होवे तो अलग ने देने का होवे तो अलग, यानी मसलन देते वक्त के ऊपर एक किलो में 900 ग्राम वाला है देते वक्त में, और लेते वक्त में एक किलो में 1100 ग्राम वाला इस तरीके का दो साव उन्होंने बना रखा था, उसके ऊपर ही आयत करीमा नाजिल हुई। ये भी बात हजरत ने शान नुज़ूल बयान किया है। फिर अलन्नास का मतलब ये है कि अपना हक वसूल करने के लिए जो चाहे वो तदबीर करेंगे, अला सीला ला करके अपना हक जबरदस्ती ताकत के बल बोते पर भी, मकर करके भी, साजिश करके भी, जबरदस्ती अपना हक लोगों से वसूल करेंगे और देने की बात आवे तो बिल्कुल नहीं देंगे। ये इन लोगों का हाल है कि जब लोगों से माफ कर लेते हैं तो पूरे पूरा लेते हैं, और जब लोगों को खेल करके देते या वजन करके देते हैं तो उसमें कमी कर डालते हैं, युक्सिरून कमी कर डालते हैं। इसमें ये सब चीज़ें आ गई, जैसे कि लोग करते हैं ना लाइट के मीटर में, पानी के मीटर में गड़बड़ी पैदा कर देवे, ये इसी आयत के उमूम में आके हराम हो जाएगा। टैक्सी के ड्राइवर, वो टैक्सी में जो आगे मीटर रखा होता है उसमें गड़बड़ कर डाले, वो भी इसी आयत के उमूम में आके हराम हो जाएगा। इसी तरीके से सब शक्लें, जैसे कि सब्जी फरोश पूरा दिन सब्जी पे पानी छिड़का ही करे, अपने को ऐसा लगे कि वो ताजगी के लिए छिड़कता है, ताजगी के लिए नहीं, पानी से वजन बढ़े इसके वास्ते। कसाई है तो गोश्त को पूरा दिन पानी में भिगोता ही रहता है ताकि वो वजन उसका घट न जावे, वजन उसका बड़ा बड़ा रहे पानी के वजन से। ये सब शक्लें इसके उमूम में आके हराम हो जाएगी, ममनू हो जाएगी। इसी तरीके से मिलावट, ये भी इसमें आता है, मिलावट करना। चुनांचे मिलावट है तो आम है दुनिया के अंदर, पानी में दूध मिलाते हैं। इसी तरीके से जो है ये पपीते के बीज होते हैं ना, पपीते के बीज उसको सुखा करके काली मिर्च के साथ बेचते हैं। इसी तरीके से वो बॉयलर फार्म के अंडे आते हैं तो उसके ट्रे में से छोटे छोटे अंडे चुन लेंगे, फिर उसको चाय के पानी में पास करके देसी कहकर बेचेंगे कि ये देसी अंडे हैं, और कलर उसका देसी जैसा हो जाता है। इसी तरह सूखी चाय के अंदर ये लोहा जब कटता है तो उसका बुरादा वो सूखी चाय में मिलाते तो चाय का वजन बढ़ जाता है उसकी वजह से। ये सब शक्लें करने के लिए नहीं सिखा रहा हूँ, ऐसा हो रहा है दुनिया में वो आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे अंदाज में दुनिया में मिलावट होती है। ये बाजारों के अंदर जो शरबत बेचने वाले होते हैं उनके यहाँ जो नींबू निचोड़े हुए रह जाए वो सब नींबू अचार वाले खरीद के ले जाते हो, जो तुम पैक अचार खाते हो ना शानदार कंपनियों के, तो वो सब वो ये लारियों पर से ले जाते हो छिल के, फिर उसके अंदर कुछ केमिकल और हल्दी और मिर्च मिलाकर पैकिंग करके दे देते हैं नींबू का अचार, वो छिलकों का। इसलिए गौर करके देखना, वो अंदर से जो निकलता है ना वो चिड़िया, तो वो बिल्कुल वो चिमड़ाइला ही होगा, बिल्कुल देख लेना आप, तजुर्बा कर लो उसका। वो सब शरबत वालों के यहाँ से गिरे हुए वो ले जाते हैं। फिर ये भजिए वाले जितने होते हैं उनके यहाँ तेल जो काला काला हो जाता है वो इतर वाले ले जाते हैं, और उसके अंदर थोड़ा सा खालिस की तरह मिलाते हैं, थोड़ा सा खालिस की तरह, और फिर उसी को बोतल में पैक करके बेचना चालू। बाकी 10 रुपए में कई बोतल आ रही थी इतना की, तुम भी इतना नहीं सोचते हो अकल से कि 10-20 रुपए में कभी अच्छा इतना आ रहा है, कभी नहीं आ रहा। तो वो काला तेल भजिए का जो हो जाता है उसमें जरा सी खुशबू भी लाके वो बेचते थे, कहते कि बहुत सस्ता मिली हो इस तरीके से। तो ये सब शक्लें हैं इसकी, वईज़ा कालूहुम अवज़नूहुम युख़सिरून। दुनिया में अजीब अजीब फन है इसके, अजीब। नदीम साहब ने एक मरतबा सुनाया था कि दूध वाला आया तो दूध में से मछली निकली, छोटी सी मछली दूध में से, तो दूसरे दिन उसको पकड़ा, फिर आया तो दे के चला गया, तो कि भाई ये क्या हो गया, कल तो दूध में से मछली निकली। तो उसने वो बात बनाने लगा, साहब ज़माना देखो कितना बदल रहा है, ऑपरेशन करके औरत को मर्द बनाते, मर्द को औरत बनाते, तो जानवर के थन में से मछली निकले तो कौन सी बड़ी बात है। बातें बनाने लगा, दो तमाचे मारे उसको पकड़ गए। वो जहाँ से दूध लेके आता है रास्ते में कहीं वो कोई खाड़ी कोटड्डा होगा वहाँ से नहर में से पानी लेके मिलाता है तो मछली भी आ गई साथ में, उसको ध्यान ही नहीं रहा, अंदर डाल लिया जल्दी जल्दी पानी में। इस तरीके से होता है दुनिया में, अजीब ये चीज़ इस ज़माने में है। पड़ोसी मुल्क के लिए अलफुरकान में आया था कि वहाँ के गवर्नर जनरल बीमार हुए, तो उनकी दवा की गई, वहाँ के माहिरीन डॉक्टरों ने तशखीस करके दवा लिखी। 6 महीने दवा खाने के बावजूद भी उनको शिफा नहीं हुई, तो अमेरिका ले गए। तो अमेरिका के डॉक्टरों ने जो है उनको देखा कि वहाँ जांच की, कहा जो अमराज की तशखीस पाकिस्तान के डॉक्टरों ने की है बिल्कुल सही की है, सही यही बीमारी है। फिर डॉक्टरों ने जो दवाएं लिखी है इस बीमारी के लिए वो भी बिल्कुल सही, फिर क्यों शिफा नहीं हुई? तो उनकी जो दवाएं वो लाए थे जो चल रही थी उसको उन्होंने लेबोरेटरी में भेजी, तो पता चला कि ये सब डुप्लीकेट दवाएं हैं, असली है ही नहीं ये दवाएं। गवर्नर जनरल को डुप्लीकेट दवाएं मिले तो आवाम का क्या हाल होता होगा? फिर कहाँ से शिफा हो गए? ये हो रहा है दुनिया के अंदर, दवाओं में इस कदर मिलावट गड़बड़ियाँ, और सेटिंगें जो चलती है वो तो अपनी जगह के होकर, किसी भी डॉक्टर के आप जाओ तो फटाफट ये चेक वो चेक फुला चेक ये चेकिंग करा के लाओ, वहाँ कमीशन तय होता है कि मैं एक्सरे के लिए भेजूँगा इतने मेरे, मैं MRI के लिए भेज, कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी ब्लड टेस्ट, यूराइन टेस्ट, फिर वो खून बिकता है बाजारों में, जो आपका टेस्ट के लिए लेते हैं ना वो बिकता है बड़ी कीमत के ऊपर, उसका बाकायदा कारोबार होता है, उसी कारोबार को चलाने के लिए तो बिला जरूरत सब टेस्ट करवाते हैं लोग। ये सब चीज़ें जो है इन आयतों के उमूम में आती है, ये बताओ उम्मत को ताकि वो सुधरे सब लोग। वैज़ा कालूहम औ वज़नूहम युख़सिरून, और मौलवियों के लिए भी है ये आयत, पढ़ाना कम और तनख्वाह पूरी लेना। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह के अंदर मदरसे में हर महीने के पहले चांद पर हर उस्ताद के पास कागज़ जाता था कि इस महीने में आपने अपने मुकर्ररा औकात दर्स के अंदर कितना कम पढ़ाया, और असातिज़ा भी इतने माशाल्लाह थे कि किसी उस्ताद को कोई मेहमान मिलने आ गया तो भी मिनट लिख लेते थे कि 5 मिनट मैंने उनसे बात की, 5 मिनट में दरसगाह में ताखिर से, और इतनी तनख्वाह वो कटवा लेते थे, पूरा मीज़ान जोड़ के भेजते थे कि इस महीने में हमारी 12 मिनट कम हुई, 20 मिनट कम हुई, और इसकी तनख्वाह कटवाते थे। तो जो औकात मदरसे के तय है उसमें अगर कमी करे तो ये भी इसी आयत के अंदर आता है, वैज़ा कालूहुम व वज़नूहुम युख़सिरून, कि जब औकात देने की बात आती है तो उसमें कमी करेंगे, तनख्वाह लेने की बात आती है तो पूरे पूरी लेंगे, वो भी इस आयत के उमूम में शामिल है। इस पर हज़रत मुफ्ती साहब का एक बहुत मुफस्सल बयान है, वो मरगूब रसाइल में छपा हुआ, इंग्लैंड में किया हुआ, कि उलमा आज किस किस तरह इस आयत की खिलाफ वर्जी करते हैं। 500-700 इंग्लैंड के उलमा थे और हज़रत ने आयत पढ़ी, वही लुल्लिल मुतफ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़क्तालू अलन्नास यस्तौफ़ून, फिर फरमाया तो मौली लोगों ने सोचा होगा कि हम मौलियों के दरमियान में ये आयत क्यों पढ़ी होगी, ये तो नाप तोल में कपी की आयत है, हम थोड़े कोई ताजिर लोग हैं। फिर जो है इसकी तशरीह की कि औकात में कमी, जिम्मेदारियों में कोताही, ये सब इस आयत के उमूम में आके हराम है, और अल्लाह के यहाँ इस पर बास पुरस होगी जो लोग इस तरह करते हैं। तो ये भी जो है आप लोगों के लिए कि आइंदा पढ़ाने बैठो तो औकात की कमी और काम की चोरी, भले जो है मदरसे की जिम्मेदार न देखे, ट्रस्टिया न देखे, लेकिन अल्लाह के यहाँ तो इसका जवाब देना पड़ेगा, किसी वजह से कमी हो गई इतनी तनख्वाह कटवा दो कि भाई हमसे कमी हो गई थी, सीधी बात। इज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युख़सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, क्या वो लोग इस बात का यकीन नहीं रखते कि उनको कयामत के दिन दोबारा जिंदा किया जाएगा? यौम यकूमुन्नासु लियौमिन अज़ीम का ताल्लुक इसी अन्नहुम मबऊसून से है कि वो बड़ा दिन यानी कयामत के दिन उनको उठना है। यौम यकूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन लोग अपनी कब्रों से खड़े होंगे तमाम आलमों के रब के सामने। रिवायतों में आता है कि पहले 300 साल की मकदार में तो सिर्फ खड़ा रहना पड़ेगा कयामत के दिन, तुम लोग 50-55 मिनट में थक जाते हो, 300 साल की मकदार तो जो है खड़ा रहना पड़ेगा मैदान महशर के अंदर। कल्ला इन्न किताब अल फुज्जारी लफी सिज्जीन, हरगिज नहीं, बिल्कुल हरगिज नहीं, यकीनन फाजिरों का आमाल नामा वो सिज्जीन के अंदर होगा। सिज्जीन क्या चीज है? कहते हैं काफिरों शयातीन सिफत इंसानों के आमाल जिस दफ्तर के अंदर लिखे जाते उस दफ्तर को सिज्जीन कहा जाता है, और ये दफ्तर सातवीं जमीन के नीचे एक जगह के ऊपर रखा जाता है और वहीं पर इबलीस और उसके लश्कर भी रहते हैं। वहां पर ये फासिकों काफिरों के आमाल नामे रखे जाते हैं, उसको मकामे सिज्जीन कहा जाता है। बाद हज़रात कहते हैं कि काफिरों की अरवाह भी वहीं रखी जाती है, ये जो मकामे सिज्जीन है सातों जमीन के नीचे, वहीं पर काफिरों फासिकों की रूह भी रखी जाती है, वहीं उनके आमाल नामे भी रखे जाते हैं और वहीं से कयामत के दिन मैदान के अंदर लाए जाएंगे। वमा अदराका मा सिज्जीन, आपको मालूम है कि वो सिज्जीन क्या चीज है? किताबुम मरकूम, लिखा हुआ दफ्तर है, लिखा हुआ चौपड़ा है जिसको लिख करके मोहर करके मलाइका रख देते हैं। एक आदमी जब तक जिंदा होता है वहां तक उसका चौपड़ा चालू होता है, मर गया चौपड़ा बंद, मोहर कर दी, फिर कयामत के दिन उसको मलाइका खोलेंगे। तो ये लिखा हुआ एक दफ्तर है मोहर बंद, जिसको कयामत के दिन अल्लाह ताला के सामने खोला जाएगा। बाज़रात कहते हैं कि सजा पाने वाले जितने भी इंसान हैं उनके आमाल नामे जहां रजिस्टर्ड करके रखे जाते हैं उस मकाम को मकामे सिज्जीन से ताबीर किया जाता है। और हजरत मुफस्सिरीन कहते हैं कि सिज्जीन को सिज्जीन कहने की वजह क्या? वजह तस्मिया, सिज्न के माने आते हैं कैद के, और चूंकि काफिरों की रूहों को उस मकाम पर कैद करके रखा जाता है इसीलिए इसको मकामे सिज्जीन से ताबीर किया जाता है। और कहते हैं कि जहन्नम का महल भी वहीं पर है, खुद जहन्नम भी मकामे सिज्जीन के अंदर है, जैसे इबलीस और उसका लश्कर मकामे सिज्जीन में है, जैसे काफिरों फासिकों के आमाल नामे मकामे सिज्जीन में है, बिल्कुल इस तरीके से जहन्नम भी मकामे सिज्जीन के अंदर है। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुजूर से किसी ने पूछा कि हुजूर कयामत के दिन जहन्नम को कहाँ से लाया जाएगा, वजी अयोम इदिन भी जहन्नम, तो कहाँ से लाया जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में यही फरमाया कि सातवीं जमीन से उसको लाया जाएगा, और उस जहन्नम के ऊपर 1000 लगाम होगी और 70,000 मलाइका हर हर लगाम पर होंगे जो उस जहन्नम को खींच रहे होंगे। और जब इंसानों से 1000 साल की मसाफत की दूरी पर वो होगी तो एकदम खींच करके आ जाएगी, और उस वक्त पर इतना भयानक मंजर होगा कि अंबिया रसूल मलाइका सब कहेंगे नफसी नफसी, हे अल्लाह रब्बी नफसी नफसी, मेरे नफ्स की आप हिफाजत फरमाइए। वैलुल यौम इज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, उस दिन झुठलाने वालों के लिए बड़ी बर्बादी होगी। अल्लज़ीन युकज़्ज़िबून बियौमिद्दीन, जो लोग कयामत के दिन को झूठ जानते थे या झूठलाते थे जजा और हिसाब और आमाल के दिन को, वमा युकद्दिबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन अथीम, और कयामत को वही झूठलाता है कौन? हर एक वो आदमी जो हद से आगे बढ़ने वाला और बड़ा गुनहगार हो, वही कयामत को झूठलाता है। मुअतद वो शख्स है जो जहालत और जाहिली आबाओ अजदाद की गलत रसूमात की पैरवी में हद से आगे निकल गया हो, जमाने जाहिलियत के आबाओ अजदाद की रसूमात की इत्तिबा में हद से आगे बढ़ गया, उसको मौतद कहते हैं। और वो यूं अकीदा रखता हो कि अल्लाह ताला दोबारा इंसानों को पैदा करने पर कादिर नहीं है, ये भी मौतद कहा जाता है। और असीम कहते हैं ऐसे गुनहगार को जो ख्वाहिश नफसानी में इतना मुनहमिक हो कि आखिरत और शरीयत के अहकाम के इनकार पर तुला हुआ हो, جو آدمی نفسانی خواہشات کے اندر زیادہ منہمک ہو جائے, ظاہر بات ہے کہ وہ قولاً احکام شریعہ کا انکار کرے گا یا عملاً انکار کرے گا. اس کو عصیم سے تعبیر کیا جاتا ہے, اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین, جب اس کے سامنے ہماری آیت قرآن میں تلاوت کی جاتی تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو اگلوں کی کہانیاں ہیں. نعوذ باللہ, قرآن کو اگلوں کی کہانی سے تعبیر کرتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ہرگز نہیں, ایسا نہیں, یہ قرآن اگلوں کی کہانی نہیں ہے, بلکہ ان کافروں کی دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا ہے. انہوں نے جو کفر اور برے اعمال کیے ہیں اس کی نحوست کے اندر, تو وہ زنگ جو لگ چکا ہے اس زنگ کی وجہ سے وہ لوگ قرآن کو اگلوں کی کہانیاں کہتے ہیں. مشہور حدیث ہے کہ انسان جب کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس کے سینے کے اوپر ایک کالا, دل میں کالا دھبا لگ جاتا ہے, توبہ کر لے ہوئے تو نکل جاتا ہے, توبہ نہ کرے تو وہ دھبا جم جاتا ہے, پھر دوسرا گناہ کرے دوسرا دھبا, تیسرا گناہ کرے تیسرا دھبا, یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے گناہ کرتے کرتے. اور اس کی علامت یہ ہے کہ نیکیوں کی رغبت ختم اور معصیت کی رغبت بڑھ جائے, اور نیکیوں کی مجلس میں دل اچٹنے لگے اور گناہوں کی مجلس کے اندر دل اس کا لگنے لگے. یہ سب اس دل کے سیاہ اور زنگ آلود ہونے کی علامتیں ہیں. تو یہ کافروں کا حال ہو گیا, اس لیے قرآن کو اگلوں کی کہانیاں کہتے ہیں. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, پکی اور حق بات یہ ہے کہ یقیناً وہ کافر لوگ اپنے رب سے قیامت کے دن روک لیے جائیں گے, یعنی اللہ تعالیٰ کی زیارت ان کو نصیب نہیں ہوگی. عام مومنین کو نصیب ہوگی, لیکن کافروں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب نہیں ہوگی. اور بعض حضرات یہ کہتے کہ پہلے ذرا سی زیارت کروائی جائے گی پھر محروم کیا جائے گا. ذرا سی زیارت کیوں کرائی جائے گی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھ کر کے اس کو دیکھنے کا اشتیاق بھڑک جائے, پھر ان کو روک لیا جائے. جیسے آپ نے کوئی خوبصورت چیز نہ دیکھی ہو تو آپ اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کیا دم ہوگا, وہ کھٹے انگور جیسا قصہ, لیکن جب آپ ایک مرتبہ اس کو دیکھ لو اور پھر اس کے حسن اور جمال کو آپ ایک بار دیکھ لو, پھر آپ کو محروم کر دیا جائے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اس طریقے سے ہوگا کہ ان کو ذرا سی جھلک دکھائی جائے گی تجلیات اور انوارات الہیہ کی, پھر روک دیا جائے گا تاکہ ان کا غم, ان کی کڑن ان کو اور زیادہ ہو اس واسطے. ثم انہم لصال الجحیم, پھر یقیناً وہ لوگ جہنم کے اندر گرنے ہی والے ہیں, داخل ہونے ہی والے ہیں, جو آگ ان کو جلانے والی ہے. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون, پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ جہنم کا عذاب ہے جس کو تم لوگ جھوٹ جانتے تھے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین, ہرگز نہیں ایسا ہو کے رہے گا کہ نیک لوگوں کا اعمال نامہ مقام علیین کے اندر ہوگا. یہ نیک لوگوں کے اعمال رکھنے کی جگہ ہے ساتویں آسمان کے اوپر, اللہ کے عرش کے نیچے, وہاں نیک لوگوں کے اعمال نامے بھی رکھ دیے جاتے ہیں. وہ جگہ کو کہتے ہیں مقام علیین, یہ بہت اونچا مقام ہے. اس کو علیین کہنے کی وجہ یہ کہ وہاں جن لوگوں کے اعمال نامے ہوں گے ان کو جنت میں اعلیٰ مقامات ملیں گے, اس لیے اس کو علیین کہتے ہیں. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ آسمان کے اوپر بہت اونچی جگہ کے اوپر رکھا ہوا ہے, آسمانوں کے اوپر بہت اونچی جگہ کے اوپر رکھا ہوا ہے, اس لیے اس کو علیین سے تعبیر کرتے ہیں, اعلیٰ جگہ کی وجہ سے. سبز زمرد کی تختی کو بھی کہتے ہیں. ان کتاب الابرار لفی علیین, اب شوق پیدا کرنے کے واسطے. وما ادراک ما علیون, تم کو معلوم ہے کہ وہ علیون کیا جگہ ہے؟ کتاب مرقوم, یہ لکھا ہوا دفتر ہے. یشہدہ المقربون, مقرب اس کو دیکھتے ہیں. مقرب سے مراد کون؟ ملائکہ, فرشتے اس کو دیکھتے ہیں. اور دوسرے مفسرین نے مقربون سے مراد لیا ہے نیک انسانوں کو, کہ نیک انسان اس مقام کے اوپر حاضر ہوں گے, اس کو دیکھیں گے. اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، نیک لوگ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے قیامت کے دن، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ، اور تختوں کے اوپر بیٹھ کر کے وہ دیکھ رہے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور جو نعمتیں اللہ کی طرف سے ان کو دی جاتی ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم پہچان لوگے ان کے چہروں کے اوپر آرام کی، نعمتوں کی تازگی، نعمتوں کا حسن پہچان لوگے، ان کے چہروں کو تم دیکھو گے پتہ چل جائے گا کہ اوہو ہو یہ تو سب نیک لوگ ہیں، چہرے ترے تازہ تازگی والے ایک دم. یسقون من رحیق مختوم، ان کو پلایا جائے گا خالص شراب، میل سے پاک ایسی شراب ان کو پلائی جائے گی. مختوم کا کیا معنی؟ مہر لگی ہوئی، سیل پیک، وہ شراب اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے پلائیں گے. دیکھو قرآن کی بعض آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نہریں شراب کی ہوگی، اور یہاں ہے کہ نہر مہر لگی ہوئی ہوگی، اور جو نہریں ہوتی ہے شراب مہر لگی ہوگی، یہاں ایسا ہے، اور دوسری جگہ ہے کہ شراب کی نہر ہوگی. دونوں میں تضاد معلوم ہوتا ہے کہ نہر کبھی پیک نہیں ہوتی، نہر تو کھلی ہوتی ہے، جب گرمی لگے تب جا کر کے نہا لیا، وہ تو کھلی ہوئی ہوتی ہے. اور یہاں فرمایا گیا ہے کہ پیک، تو حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ دونوں الگ الگ مقام ہیں، ایک مقام ہے نہروں کی شراب کا، اور دوسری چھوٹے چھوٹے برتنوں میں پیکنگ والی شراب بھی اللہ کی طرف سے جنتیوں کو دی جائے گی. اس لیے یہ دو مقام کو الگ الگ جگہ کے اوپر پلایا جائے بتایا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو رحیق مختوم پلائیں گے، یعنی جنت کی مہر والی شراب پلائیں گے اللہ تعالیٰ. اس لیے پیاسوں کو پانی پلاؤ، گرمی بہت ہے، راستے پر مٹکے رکھ دیے، ٹنکی رکھ دی، کولر رکھ دیا، بھائی پیو پانی، تو یہ سبھی لگا دیا. اب یہ تو محرم پہ خالی لگاتے ہیں، پھر پورا سال لگاتے نہیں ہیں. محرم سردی میں آوے، بارش میں آوے، لوگوں کو ایک قطرے کی پیاس نہیں ہو تو بھی لگائیں گے، اور ابھی گرمی ہے تو کسی کو سبیل لگانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. تو یہ گرمیوں میں جب لوگوں کو پیاس لگتی ہو تب پلاؤ لوگوں کو پانی. اب یہ جو فرمایا کہ یشہدہ المقربون، تو اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ مقرب فرشتے یا اللہ کے مقرب بندے خوش ہو کر کے مومنین کے اعمال نامے دیکھنے کے لیے باقاعدہ حاضر ہوتے ہیں، ملائکہ مقربین بھی اور نیک مومنین بھی، کہ جہاں وہ اعمال نامے پہنچتے ہیں مومن کے انتقال کے بعد تو وہ دیکھنے حاضر ہوتے کہ وہ ہمارا فلانا بھائی آیا، چلو جا کر کے اس کا اعمال نامہ دیکھتے ہیں، کتنا اچھا ہے، کتنی ساری اس میں نیکیاں لکھی ہوئی ہیں، وہ سب دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ملائکہ بھی اور نیک مومنین بھی، اس طرح کا اعمال نامہ ہوتا ہے. اب روح مومن کی کہا گیا علیین میں جاتی ہے، اور کافروں فاسقوں کی کہاں جاتی ہے؟ اس میں سافلین کے اندر. تو اتنی بات تو ضرور ہے کہ علیین کے اندر ہو کہ سافلین کے اندر ہو، قبر کے اندر جہاں جسم ہوتا ہے وہاں سے روح کا تعلق باقی رہتا ہے کسی نہ کسی درجے کے اندر. اسی لیے جب آدمی کسی صاحب قبر کے پاس حاضر ہوتا ہے، اس کو سلام کرتا ہے تو وہ اس کو سنتا ہے. پھر بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ صاحب قبر اس کو دیکھتا ہے کون آیا کون نہیں آیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود جواب دینا، یہ تو کئی حدیثوں سے ثابت ہے. تو روح کا چاہے علیین میں ہو چاہے اسفل السافلین کے اندر ہو، قبر میں جہاں جسم ہوتا ہے اس کے ساتھ تعلق باقی رہتا ہے. اسی وجہ سے تو ان کی روح کو جو عذاب دیا جائے گا برزخ میں، تو اس عذاب کا اثر بدن کو بھی ہوتا ہے، اور روح جو جنت کی نعمتوں کو دیکھتی اور مشاہدہ کرتی ہے تو اس کی راحت بدن کو بھی پہنچتی ہے، وہ تعلق کی وجہ سے. ختامہ مسک، اس کی مہر جمی ہوئی مشک سے ہوگی. یعنی اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب کیا کہ یہ جو شراب ہے اس کو جو پیک کیا گیا ہے، تو پیک کرنے کے لیے سڑیلے بلے نہیں بلکہ اس کے اوپر جو ہے مشک، جامد مشک سے اس کو پیک کیا جائے گا، और जामित मुश्क बहुत प्यारी होती है, उसको थोड़ी सी आप कपड़े प्रेस करके अंदर रख दो तो फिर कुएं कपड़े महकते महकते हो जाए, फिर निकाल के दूसरे कपड़े में, फिर तीसरे कपड़े में। अलमिस्कुल जामित सऊदीया में मिलती है, बहुत उम्दा किस्म की। तो वो शराब की पैकिंग जामिद मिश्क से होगी। और बाद हजरात ने इसका मतलब यूं बयान किया कि जब ये लोग शराब पियेंगे जन्नत की, तो आखिरी जो घूंट मारेंगे शराब का, तो उसके अंदर से मुश्क की खुशबुएं निकलेगी आखिरी घूंट के अंदर से। हालांकि आमतन दुनिया में इंसान जब कोई चीज पीता है तो आखिर के अंदर कुछ नीचे बिया कचरे ये सब चीजें, जैसे कि आप जो है संतरे का रस पियो तो नीचे आखिर में थोड़ा सा कूचा आ जाता है और उसकी बीज वगैरह आ जाते हैं। जन्नत में ऐसा नहीं होगा, वहाँ आखिरी घुट के ऊपर मुश्क की जो है खुशबू निकलेगी। तो फिर ऊपर वाले घुटों का क्या हाल होगा उसके ऊपर कयास कर लेने का। और जन्नत के अंदर जो मोहर लगी हुई शराब मिलेगी, तो दुनिया में तो मोहर क्यों लगाते हैं? हिफाजत के लिए, कि अंदर जो है मक्खी न गिरे, अंदर कीड़ी न चली जावे, चींटी दाखिल न हो जाए, धूल गर्दो गुबार न गिर जावे। जन्नत में काहे की जरूरत इस तरह हिफाजत की? का ये मोहर लगी हुई देना इकराम मोमिन के खातिर है। इसलिए कि दुनिया में लोग कोई खुली हुई चीज पीना ऐप समझते हैं कि मुस्तमल बोतल लाया खुली हुई, पैक लानी चाहिए थी, बहुत से लोग उसको मायूब समझते हैं। तो बतौर इकराम के वहां मोहर से, यानी जामिद मुश्क से मोहर लगी हुई बोतलें इनको जन्नत के अंदर पिलाई जाएगी। वफी जालिक फलियतनाफसिल मुतनाफिसून, इसी नेमतों को हासिल करने में ललचाने वालों को बढ़ चढ़ करके ललचाना चाहिए। एक तर्जुमा, दूसरा तर्जुमा, इसी तरह की नेमतों को हासिल करने में आगे बढ़ने वालों को आगे बढ़ना चाहिए। यानी ये है आगे बढ़ने की चीज, ललचाने की चीज, जन्नत की नेमतें जिन आमाल की बुनियाद के ऊपर मिला करती है। वह मिजाजुहु मिन तस्नीम, और उसके अंदर मिक्स किया जाएगा तस्नीम चश्मे के पानी को। देखो तस्नीम जो है ना सीनाम से मुश्तक है, और सीनाम कोहान को कहते हैं, और हर बुलंद चीज को सनाम कहा जाता है। तस्नीम इसको कहा गया है क्योंकि उसका पानी बहुत ऊंची क्वालिटी का, अपने बोलते हैं ना ऊंची क्वालिटी का है, जो ये तस्नीम का ये लुगवी माना इसका इस तरीके से निकलता है। कहते हैं कि तस्नीम एक ऐसा चश्मा है जो हवा में चलता है, सुभान अल्लाह, मिट्टी पर नहीं हवा में चलता है वो चश्मा, अधर जन्नत के अंदर, और जन्नतियों के बर्तन के अंदर आ करके उसका पानी गिरेगा। हवा में चलने वाला ये चश्मा है। उस तस्नीम नामी चश्मे में से उनको शराब के साथ मिक्स करके दिया जाएगा कि शराब में तस्नीम को मिक्स करो और पियो। कहते हैं कि जन्नत की आला तरीन शराब के अंदर तस्नीम को समझा जाता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अनुमा फरमाते हैं कि तस्नीम जो है ना उन नामालूम चीज़ों में से हैं जिनके मुतालिक अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, इंसानों को क्या पता अल्लाह ने उनके लिए जन्नत में आंखों की ठंडक की कैसी कैसी नेमतें बनाई, अल्लाह ने उसको मख्फी रखा। तो जो सुरूर और ठंडक देने वाली नेमतें अल्लाह ने मख्फी रखी है उसमें तस्नीम है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि उसकी हकीकत हमको मालूम नहीं, वहाँ पियेंगे तभी इंशाअल्लाह पता चलेगा। ऐनै यशरबु बिहल मुकर्रबून, एक चश्मा है जिसमें से मुकर्रब लोग पीते हैं। इन्नल्लज़ीन अजरमू कानू मिनल्लज़ीन आमनू यदहकून, यकीनन ये मुजरिम लोग अबू जहल और दूसरे सब काफिर वो ईमान वालों को देख करके हंसा करते थे। क्या मतलब? काफिर जब ईमान वालों को देखते तो खाली खाली हमदर्दी दिखाने का ढोंग करते, ईमान वालों को देखे तो हमदर्दी का ढोंग, और बतौर मजाक के क्या कहते, ये मुसलमान चले बेचारे भोले भाले हैं, ऐसे भोले भाले हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में आ गए और कलमा पढ़ लिया और खानदान वालों को छोड़ दिया। तो ये मुसलमानों को भोला भाला सादा सीधा कहना ये कैसे होता था? हंसने और मजाक उड़ाने के तौर पर वो लोग ऐसी बातें करते थे। और अल्लामा उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर एक बहुत सख्त बात लिखी है कि आजकल के हालात का जायजा लो दुनिया के अंदर, तो कुछ लोग दुनियावी नई जदीद तालीम की नहुसत से दीन और आखिरत से ऐसे गाफिल और बेफिक्रे हो जाते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान बराए नाम रह जाता है, और उलमा और दीनदारों के साथ वो इसी तरीके का मजाक का मामला करते हैं जो काफिर लोग अहले ईमान से मजाक का मामला करते हैं। कहते नहीं ये क्या मदरसे 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 मकतब 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 दीन दीन ये क्या बातें करो कॉलेजों की, ज़माना एडवांस चल रहा है, मॉडर्न ज़माना है, बातें करो मीडिया की, बातें करो अंग्रेज़ी तालीम की। ऐसे बकने वाले होते हैं जो अपने आप को रोशन ख्याल कहते हैं। तो कहा अल्लामा उस्मानी फरमाते कि वो इस आयत के मिसदाक हैं कि जो इस तरीके की जो है बातें बका करते हैं। बाद रिवायतों के अंदर आया, फिर आगे अल्लामा उस्मानी ने ये लिखा कि हक ताला तमाम मुसलमानों को इस अजाब अलीम से नजात अता फरमाए। अजाब अलीम से ताबीर किया कि दीनदार और अहले हक को इस तरह हकीर समझना और दुनियावी जदीद तालीम के चक्करों के अंदर आकर दीनी तालीम को हकीर समझना, अल्लाह इस अजाब अलीम से उम्मत को नजात अता फरमाए, ये लिखा है। अब अंदाजा लगाओ कितने सख्त कलिमात है। अल्लज़ीन आमनू से मुराद बाज़ हज़रात ने हज़रत अम्मार, हज़रत खब्बाब, हज़रत सुहेब, हज़रत बिलाल रिद्वानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन और उनके नादार साथियों को मुराद लिया है कि जिनको मक्का के काफिर मुजरिमाना तौर पर उनका मजाक उड़ाते थे और उनके ऊपर हंसते थे। वइज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून, और जब ये ईमान वाले उन काफिरों के पास से गुजरते थे तो ये काफिर लोग उनको आँख मारते थे। हज़रत शेखुलिंद रहमतुल्लाह अलैह ने आँख मारने का ही तर्जुमा किया है कि आँख मारते थे। क्या मतलब आँख मारने का? कि इशारे करते थे तौहीन के अंदाज में। जैसे होता है ना किसी मजलिस में आप दो तीन साथी बैठे हो और किसी की फिरकी उतारनी हो, मजाक उड़ानी हो, तो आँखों के इशारे से करते हैं। ये है यतगामज़ून का मतलब कि ये काफिरों का हाल ये है कि गरीब मुसलमान उनके पास से गुजरते हैं तो आँखों के इशारे से वो उनका मजाक और इस्तेहजा करते हैं। وَإِذَنْ قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُنْ قَلَبُوا فَكِهِينَ, اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر کے جاتے ہیں تو باتیں بناتے ہوئے لوٹ کر کے جاتے ہیں۔ کیا باتیں بناتے ہیں؟ ہمارے عقیدے تو بالکل صحیح, ہمارے اعمال تو بالکل صحیح, ہمارے نظریات تو بالکل صحیح, ورنہ ہم کو یہ سب نعمتیں تھوڑی ملتی جو دنیا میں ملی ہوئی۔ وہ کافی لوگ ایسا کہتے تھے کہ دنیا کی نعمتیں, اقتدار, مال, عہدہ, پیسے, عزت جو ملی ہے ہمارے عقیدے اور اعمال کے صحیح ہونے کی وجہ سے ملی ہے۔ اس طرح باتیں اپنے گھر والوں کو کہتے, اپنے دل کو اور گھر والوں کو خالی خوش کرتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ, اور جب وہ کافر مومنوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ سب بہک گئے, انہا اولائی لضالون, یہ مسلمان تو بالکل بہک گئے ہیں, گمراہ ہو گئے۔ کیوں بہک گئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اس لیے بہک گئے۔ وما ارسلوا علیہم حافظین, ہم نے ان کافروں کو مسلمانوں پر نگہبان بنا کے نہیں بھیجا۔ بہت سے نیورے ایسے ہوتے ہیں دنیا میں, کون کیا کرتا ہے بس اسی کی فکر لے کے بیٹھے رہتے ہیں, ان کا دھندا ہی ہے کون کیا کرتا ہے, ان کو خود کیا کرنے کا اس کی پڑی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ان سب کے لیے آئے تھے, وما ارسلوا علیہم حافظین, کہ اللہ نے تم کو ان کا نگہبان بنا کے نہیں بھیجا, اپنی فکر کرو, پارکی پنچایت میں مت پڑو۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, سو ایمان والے کافروں سے قیامت کے دن ہنستے ہوں گے۔ آج تو مسلمانوں پر ہنسو, قیامت کے دن مسلمان کافروں پر ہنسیں گے۔ حدیث میں اس کی تفصیلات موجود ہے, جنت کے اندر کھڑکی یا دروازہ کھول کر کے مسلمان لوگ جو ہے کافر دوستوں کو دیکھیں گے, کافر ظالم کو دیکھیں گے اور ان کا مذاق بنائیں گے. کیسے مذاق بنائیں گے؟ وہ جب کھڑکی کھولیں گے تو وہ ان کا کافر دوست کہے گا, مجھے بھی وہاں لے لیں, تو جائیں وہاں, یہاں تو بہت تکلیف ہے, تو بہت کتنے مزے میں, لے لیں ہم کو بھی وہاں, کہ چلا آ جا. اب وہ جہنم کے اندر سے محنت سے نکل کے اوپر تک آنے میں کتنی دیر لگے, تو محنت مشقت سے وہ اوپر آئے گا وہاں تک, اتنے میں مسلمان دروازہ بند کر دے گا. اس طرح مذاق اڑائیں گے, حدیث میں موجود ہے کہ مسلمان اس طرح کافروں کے مذاق اڑائیں گے اور ہنسیں گے. علی الارائک ینظرون, جنت کے تختوں کے اوپر بیٹھے بیٹھے کافروں کو دیکھتے ہوں گے. حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون, کافروں کو جو کام وہ کرتے تھے بس اسی کا بدلہ دیا جائے گا. دنیا میں جیسے دھندے ایسی جزا ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جائے گی. چلو